झलक की असली पहचान, उसका पावर और उसकी पर्सनालिटी, ये सब कुछ आर्यन को अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। इस वक्त उसे खुद से ही नफरत सी महसूस हो रही थी, क्योंकि घर जाने के बाद उसके पिता धीरज और उसकी बहन मीरा दोनों का ही चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। जिस लड़की को आज तक उन्होंने सड़क का कूड़ा कचरा समझा, असल में वही सबकी उस्ताद निकली, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के चेहरों पर एक अलग ही तरह का पछतावा साफ नजर आ रहा था। वहीं धीरज जल्दी से मीरा को देखते हुए बोले थे, कम से कम तुम तो एक लड़की हो, तुम तो उसे अपना दोस्त भी मानती थी, क्या तुम अपनी दोस्ती उसके साथ बरकरार नहीं रख सकती थी? क्या जरूरत थी तुम्हें उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने की? ये कहते ही धीरज आर्यन को देखने लगे। अब तो उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अपने बेटे से ये कह सके कि उसे इस तरीके से झलक के साथ नहीं रहना चाहिए था। उधर इन सभी को बहुत बुरा लग रहा था, सभी खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो बेइज्जती उन्होंने झलक की थी, असल में वो झलक की नहीं बल्कि खुद की ही बेइज्जती कर रहे थे, खुद पर ही हंस रहे थे। सब कुछ जैसे एक अलग लेवल का तमाशा बन गया था। आर्यन खुद को रोक नहीं पाया और बार जाकर पीना शुरू कर दिया था। अब फिलहाल जैसे ही हंसी खुशी की आवाज़ आर्यन के कानों में पड़ी, वो पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि जहां वो दुख में बैठा हुआ था, शोक मना रहा था, वहीं कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, हंस रहे थे। ये बात उसे बहुत ज्यादा बुरी लगी। वो गुस्से में उठकर अपनी ड्रिंक की बोतल जमीन पर पटक देता है और सीधे डीजे के पास जाकर उसे तमाचा मार देता है। फिर उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ बैठा हुआ आदमी पूरी तरह से दुख में है और तुम लोग पार्टी कंटिन्यू कर रहे हो? क्या तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है? ये बोलकर वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। अभी तक उसकी नज़र झलक पर नहीं गई थी, लेकिन झलक उसे तिरछी मुस्कुराहट के साथ देख चुकी थी। तभी प्राची आगे आई और आर्यन को रोकते हुए बोली, मिस्टर रायचंद, आपको जाकर वहां बैठना चाहिए, इस तरीके से आप हमारे स्टाफ पर हाथ नहीं उठा सकते, और वैसे भी ये क्लब है, यहाँ सब अपनी मर्जी से आते हैं, पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, हम किसी को रोक नहीं सकते। प्राची की बात सुनकर आर्यन उसे घूर कर देखने लगा और बोला, लगता है तुम्हारी जबान मेरे सामने कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। ये कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल प्राची के सिर पर मारने ही वाला था, लेकिन तभी झलक ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। झलक को वहां देखकर आर्यन का चेहरा मिश्रित भावनाओं से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में झलक को देख रहा है या कोई सपना देख रहा है। वो हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ? झलक, क्या तुम सच में यहाँ हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन झलक ने बिना जवाब दिए उसी की बोतल उसके हाथ पर जोर से दे मारी और ठंडे गुस्से में बोली, अपनी हद में रहो आर्यन रायचंद, खबरदार जो तुमने मेरी दोस्त को आंख उठाकर भी देखा तो। वहीं अनामिका भी झलक के पास आकर खड़ी हो गई और आर्यन को घूरते हुए बोली, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम आर्यन रायचंद? लगता है अपना गम भुलाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ आकर पंगा ले लिया। क्या तुम जानते नहीं कि झलक से जो भी पंगा लेता है उसके साथ क्या से क्या हो सकता है? ये सुनकर आर्यन तुरंत झलक की तरफ मुड़ा और बोला, आई एम सॉरी, मेरा किसी को परेशान करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और झलक, तुम तो जानती हो ना कि मैं बदल चुका हूँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। वो रुक कर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि जिस आदमी को मैं तुम्हारा शुगर डैडी समझ रहा था वो तुम्हारे दादाजी हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। आर्यन की ये बात सुनकर अनामिका गुस्से से उसे घूरने लगी, क्योंकि उसने झलक के दादाजी के बारे में गलत बात कह दी थी। लेकिन झलक ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी। वो आगे बढ़ी, आर्यन का कॉलर ठीक किया और बेहद शांत लेकिन तीखे अंदाज में बोली, आर्यन रायचंद, तुम जानते हो, तुम अभी तक अगर मेरे सामने ठीक ठाक खड़े हो तो इसका मतलब साफ है कि मैं तुम्हें अपनी दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझती। सुन रहे हो ना मेरी बात? एक वक्त था जब तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इनफैक्ट उस वक्त तुम ही थे जो हमेशा मेरा साथ देते थे। सिद्धार्थ खुराना की पार्टी में तुमने मुझे लोगों की गंदी नजरों से बचाया, मेरा साथ दिया। उस वक्त मुझे लगा था कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, लेकिन जानते हो इंसान को क्या बर्बाद करता है? उसका लालच, उसका घमंड और ये सोच कि वो सब कुछ हासिल कर सकता है, यही चीजें इंसान को अंदर से खत्म कर देती हैं। तुम जानते हो, तुम्हारे मामले में सारी चीजें ठीक थीं, लेकिन तुमने जो ये सोचा कि मैं तुम्हारी नजरों में एक दो कौड़ी की लड़की हूँ और तुम मुझे पाना चाहते थे, लेकिन तुम मुझे पा नहीं पाए। और तुम आर्यन रायचंद, जिसका रिकॉर्ड हमेशा से ही लड़कियों को लेकर अलग रहा है, जिसने शहर की बड़ी बड़ी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को डेट किया है, उनके साथ वक्त बिताया है, लेकिन वो एक मामूली सी लड़की झलक को अपने साथ नहीं ला पाया, इस बात का तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस है, और उसी चक्कर में तुम मेरे पीछे बेंगलुरु तक जा पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल आर्यन रायचंद, तुम्हारी गलतियों के बाद भी तुमने जो कुछ अच्छे काम किए थे उनका थोड़ा बहुत असर अभी बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा मेरे रास्ते में मत आना और मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करना। जैसे ही झलक ने गहरे और ठंडे अंदाज में ये कहा, आर्यन के हाथ पैर अचानक कांपने लगे,
क्योंकि झलक भले ही शांति से उससे बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चेतावनी और उसकी बातों में ऐसा असर था कि आर्यन पूरी तरह से डर गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और फटाफट वहां से भाग गया। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वहीं प्राची और बाकी सभी लोग हैरानी से झलक को देखने लगे और बोले, ये क्या झलक, तुमने तो उससे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात की, फिर वो इस तरह क्यों भाग गया? हमने तो देखा कि तुमने बस उसका हाथ पकड़ा था, उसके बाद ही वो चला गया। वहीं अनामिका को समझने में देर नहीं लगी कि शायद झलक ने उसका हाथ इतनी जोर से दबाया था कि वो दर्द सह नहीं पाया, और ऊपर से झलक की बातें ही काफी थी उसे पूरी तरह से डराने के लिए। आर्यन को इस हालत में देखकर एक बार फिर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े और जोर शोर से अपनी पार्टी एंजॉय करने लगे। वहीं दूसरी ओर शहर के एक मशहूर अस्पताल में इस वक्त आकांक्षा ओबेरॉय अपने चेहरे पर कालिख लगाए फटे हुए कपड़ों में उसी हालत में बैठी हुई थी। इन सब बातों को कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन आकांक्षा ने अभी तक अपने कपड़े तक नहीं बदले थे। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे कितना बड़ा सदमा लगा है, और सबसे बड़ा सदमा उसे इस बात का लगा था कि झलक मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की मालकिन है। ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके पिता कई बार उसे रिक्वेस्ट कर चुके थे कि वो उठकर सबसे पहले अपने कपड़े बदल ले, अपना चेहरा धो ले, लेकिन आकांक्षा जैसे किसी गहरे सदमे में चली गई थी। वो कुछ भी बोलने या समझने की हालत में नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों ने गुस्से में आकर न केवल उसे जूते चप्पलों की माला पहनाई थी, बल्कि उसके चेहरे पर कालिख पोती थी और उसके साथ मारपीट भी की थी। डॉक्टर्स ने उसकी हल्की फुल्की ड्रेसिंग कर दी थी। उसके माथे, हाथ और गालों पर छोटे छोटे घाव थे, लेकिन उसने अभी तक अपने कपड़े तक नहीं बदले थे। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। वहीं ईशान ओबेरॉय की आंखों में आज आंसू आ गए थे। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो टूट चुके थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस हाल में होगी, लेकिन फिलहाल उनके पास सिवाय दर्द सहने के कोई और रास्ता नहीं था। उसी फ्लोर पर आकांक्षा से थोड़ी दूरी पर रणविजय खुराना भी मौजूद था,
क्योंकि उसकी दादी उर्वशी खुराना का अस्पताल में इलाज चल रहा था। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उर्वशी को होश नहीं आया था और न ही नैना ओबेरॉय को होश आया था। रणविजय एकदम सख्त और डार्क चेहरे के साथ वहां बैठा हुआ था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में उसकी सालों की बनाई हुई प्लानिंग इस तरह बर्बाद हो जाएगी। जिस पहचान को उसने पूरी दुनिया और समाज से छुपाकर रखा था, वो इस तरह सबके सामने आ जाएगी। इतना ही नहीं, उसके नाजायज होने की सच्चाई सामने आने से न सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ा था, बल्कि उसके काम पर भी गहरा असर पड़ा था। उसने अपनी मेहनत के दम पर जो कंपनी खड़ी की थी, उसके माँ के ट्रस्ट और स्टॉक्स बुरी तरह गिर चुके थे। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन रणविजय के दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था जब अनामिका ने उसे थप्पड़ मारा था और पूरे समाज के सामने ये सच उजागर कर दिया था कि वो कौन है। क्या आप लोग जानते हैं कि ये रणविजय खुराना असल में कौन है? ये सिद्धार्थ खुराना का सौतेला भाई है, और इसकी वजह से ही उसके पिता की जान गई और सिद्धार्थ खुराना की माँ की भी। ये सारी बातें उसके दिमाग में ऐसे घूम रही थीं जैसे पिघला हुआ शीशा उसकी नसों में दौड़ रहा हो। वो न ठीक से सोच पा रहा था, न ही कुछ समझ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो। बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो सिद्धार्थ खुराना को बर्बाद करने के लिए आया था, बदला लेने के लिए आया था। इतना ही नहीं, वो आकांक्षा ओबेरॉय के साथ भी अपनी गंदी मंशा पूरी करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पूरी तरह से उल्टा पड़ गया था, सब कुछ बिखर चुका था। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए स्टोरी मणियाँ।